खंड आठ कथा समीक्षा। हिंदी की कथा समीक्षा के इतिहास में छठे दशक के मध्य युवा कथाकारों की एक पूरी पीढ़ी का उदय महत्वपूर्ण घटना है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राम कुमार वर्मा, मार्कंडेय, कृष्णा सोबती, अमरकांत, फणीश्वर नाथ रेणु, कहानी के क्षेत्र में एक साथ इतने नामों का उभर कर आना जैसे कहानी के क्षेत्र में एक आंदोलन की शुरुआत का सूचक है। इसी समय 1955 ईस्वी सरस्वती प्रेस से भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में कहानी पत्रिका का निकलना आकस्मिक नहीं है। इसके संपादक भले ही बहुत सफल कहानीकार न रहे हो, परंतु उन्होंने एक अत्यंत सफल संपादक के रूप में इस सृजनात्मक उभार को एकजुट करने में योग दिया। इसी पत्रिका में कहानी संबंधी आलोचनात्मक लेखों का प्रकाशन आरंभ हुआ और इसके 1956 ईस्वी के नव वर्षांक में प्रकाशित अपने लेख आज की हिंदी कहानी में नामवर सिंह ने पहली बार यह प्रश्न उठाया कि नई कविता की तरह नई कहानी नाम की एक भी कोई भी चीज है या नहीं। प्रेमचंद के वस्तुगत यथार्थ और जैनेन्द्र व अज्ञेय की अंतर्निष्ठ वैयक्तिकता के बीच ये युवा कथाकार मध्यम मार्ग खोज रहे थे। इस नए उफान ने जो नई जमीन तैयार की थी, उसकी समीक्षा के लिए कथा समीक्षा की पुरानी परिपाटी की अपर्याप्तता को भी नामवर सिंह कहीं गहरे महसूस कर रहे थे। कहानी नई कहानी में संकलित नई कहानी सफलता और सार्थकता शीर्षक लेख में उन्होंने घोषणा की कि यह आवश्यकता हो गया है कि कहानी की आलोचना को एक नए स्तर पर उठाया जाए। टेक्निक की शास्त्रीय चर्चाओं और कहानियों का सारांश बतलाते हुए उनकी सामान्य समस्याओं के परिचयात्मक विवरणों का काम बहुत हो चुका। इसी संदर्भ में उन्होंने कहानी संबंधी सामान्य धारणा को सही कहानी की समीक्षा के रास्ते की बाधा बताते हुए कहानी को कथानक, चरित्र, वातावरण, भावनात्मक प्रभाव, विषय वस्तु आदि अलग अलग अवयवों के रूप में देखने की अभ्यस्तता का विरोध किया और कुछ और आगे बढ़कर रचनाधर्मी कहानी की संश्लिष्टता को समझने की मांग की। अपनी इस समझ को उन्होंने अज्ञेय की कहानी पठार का धीरज पर लागू करके दिखाने की कोशिश की। इसी संदर्भ में उन्होंने कहानी की सृजनात्मक भाषा पर विचार किया और उसमें संकेत, बिंब, प्रतीकात्मक प्रयोगों का विवेचन करते हुए उनमें निहित खतरों के प्रति सावधान भी किया। पुस्तक के बारे में उनका दावा है कि मैंने कथा समीक्षा की एक पद्धति निकालने की कोशिश की है। इस कोशिश की शुरुआत का श्रेय निस्संदेह नामवर सिंह को दिया जाएगा, परंतु विडंबना यह है कि कहानी के क्षेत्र में जिस नए उफान को उन्होंने नई कहानी नाम देने की कोशिश की, उसका दोहरा विरोध हुआ। स्वयं कथाकारों को इस नाम से नई कविता की व्यक्तिवादी संकीर्णता की राह चले जाने का खतरा महसूस हुआ। शायद उन्हें नए विशेषण से कथा साहित्य पर एक गलत प्रवृत्ति के चस्पा हो जाने की आशंका भी पैदा हुई। दूसरी तरफ नई कविता के पक्षधर आलोचकों को शायद यह आशंका विचलित करने लगी कि नई विशेषण का नकाब ओढ़कर कहानी कविता के गौरवपूर्ण क्षेत्र में घुसपैठ न करने लगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने तो कहानी को बचनोत्तर गीतों के स्तर की सरल सुगम लोकप्रिय विधा कहते हुए जैसे उसकी साहित्यिकता को नकार दिया। उनके अनुसार ऐसी लोकप्रिय विधा की सीमा यही है कि उसमें कविता की सी सूक्ष्मता और नफासत आना संभव ही नहीं। इन दो दो तरफा विरोधों के बावजूद नई कहानी का यह आंदोलन लगभग एक पूरे दशक तक चला। इस बीच उसी के समानांतर कथा समीक्षा भी लेखों के माध्यम से चलती रही। राजकमल प्रकाशन से भैरव प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में नई कहानी पत्रिका 1960 ईस्वी का प्रकाशन समारंभ हुआ और कहानी संबंधी चर्चा भी धारावाहिक रूप में से चल निकली। हाशिए पर शीर्षक स्तंभ में नियमित रूप से लिखते हुए नामवर सिंह ने कहानी की सामान्य चर्चा की को कहानी विशेष की चर्चा पर टिका दिया। इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण विवाद कहानी अच्छी और नई शीर्षक से विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण की एक शिल्पहीन कहानी और उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी को लेकर हुआ। विवाद का आरंभ नामवर सिंह ने कहानी लेके ने किया, लेकिन वह सिलसिला एक साल तक चला जिसमें अनेक लोगों ने भाग लिया। इन चर्चाओं की विशेषकर इस बात में थी कि इनके केंद्र में विशिष्ट कहानियां थीं, सामान्य सिद्धांत नहीं, और इस तरह व्यावहारिक समीक्षा के बीच से कथा समीक्षा का सिद्धांत या पद्धति स्वतः उभर रही थी। इस पत्रिका में मार्कंडेय ने कहानी संग्रहों के विधिवत समीक्षाएं प्रस्तुत की और इसी में आगे चलकर वह एक कहानी स्तंभ चालू किया जिसमें नई या पुरानी अपनी पसंद की कोई एक विशिष्ट कहानी चुनकर अनेक कहानीकारों ने कथा समीक्षाओं का क्रम जारी रखा। बाद में धर्मयुग में लगभग 2 वर्षों तक चलने वाला एक कथा दशक शीर्षक स्तंभ जैसे ही इस क्रम का बढ़ाव था। इस स्तंभ में हिंदी के सभी उल्लेखनीय कहानीकारों की कहानी के साथ उनके वक्तव्य भी प्रकाशित किए गए और इन वक्तव्यों पर आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं भी। इस संपूर्ण आयोजन से कथा समीक्षा की किसी निश्चित प्रणाली का विकास भले ही नहीं हुआ, किंतु इससे एक तो उस समूचे कथा दशक के सृजनात्मक प्रयासों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, दूसरे किसी हद तक इस विधा या व्यवसायीकरण भी हुआ ही। कुछ वक्तव्यों में अपनी सृजन प्रक्रिया की चर्चा से हटकर कहानी की रचना से संबद्ध कुछ मूलभूत समस्याओं पर विचार किया गया। इस दृष्टि से निर्मल वर्मा का वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण कहा जाएगा। इस संपूर्ण कथा दशक में समीक्षात्मक लेखों की सरगर्मी के बीच कथा समीक्षा की दिशा में जो पुरस्कार प्रकाशन हुआ उस उनमें नामवर सिंह का कहानी नई कहानी जो उनके इस पूरे दौर में लिखे गए लेखों का संग्रह है, कमलेश्वर की नई कहानी की भूमिका, देवी शंकर अवस्थी द्वारा संपादित नई कहानी संदर्भ और प्रकृति, और राजेंद्र यादव की कहानी स्वरूप और संवेदना विशेष उल्लेखनीय है। राजेंद्र यादव ने इसके अतिरिक्त एक दुनिया समानांतर नामक कहानी संग्रह का संपादन कर उसकी एक 72 पृष्ठों की भूमिका भी लिखी। इनमें से कमलेश्वर की पुस्तक का स्वर आंदोलनात्मक है। वह मानो नई कहानी की समझ से ज्यादा तत्संबंधी घोषणाएं प्रस्तुत करता है। राजेंद्र यादव की पुस्तक में नई कहानी की उनकी अपनी समझ व्यक्त हुई है। देवी शंकर अवस्थी को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने अपने संपादित ग्रंथ की भूमिका में नामवर सिंह की मान्यताओं का भाष्य प्रस्तुत किया। यह बात अलग है कि इस प्रक्रिया में उन्होंने जो ऐतिहासिक प्रमाण दिए उनमें कुछ तथ्य संबंधी भूले रह गए। यह दशक समाप्त होते न होते नई कहानी आंदोलन की आंदोलनात्मक प्रतिक्रियाएं सचेतन कहानी और अकहानी के नारे के साथ सामने आई। विडंबना यह है कि इनमें से सचेतनवादी नई कहानी के समर्थकों की तुलना में पुरातन पंथी और इनकी तथा कथित नवीनता के विरुद्ध पुराने यथार्थवाद के समर्थक थे और अकहानी एंटी स्टोरी के समर्थक इनकी अपेक्षा कहीं अधिक आधुनिक थे। सचेतन कहानी का नारा देने वाले कहानीकारों ने कहानी संबंधी किसी नई दृष्टि या समझ का प्रमाण देने के बजाय कुछ लेखकों के द्वारा सामूहिक रूप से एक नारे की आड़ में अपने को प्रतिष्ठित करने के प्रयत्न का आभास ही अधिक दिया। इनमें प्रायः ऐसे लेखक शामिल थे जो नई कहानी में सम्मिलित न हो सके थे। उनमें महीप सिंह, मनोहर चौहान, रविंद्र कालिया और गंगा प्रसाद विमल ने अकहानी का झंडा उठाकर नई कहानी की तुलना में अपनी अत्याधुनिकता की घोषणा की। इसमें संदेह नहीं कि अकहानी की बात उठाकर इस वर्ग के लेखकों ने कहानी में कथानक का विरोध किया। अपने कथ्य में ये निश्चय ही नए कहानीकारों की अपेक्षा कहीं अधिक साहसी दिखाई पड़े, किंतु अत्याधुनिकता की दावेदारी के अतिरिक्त कथा समीक्षा का कोई ठोस और टिकाऊ सिद्धांत इनकी विरोध प्रक्रिया के माध्यम से सामने नहीं आया। परिणामतः यह आंदोलन भी टिक न सका। असफल होने पर भी इन विरोधी स्वरों की सार्थकता इस बात में सिद्ध हुई कि जिस प्रकार नई कविता के विरोध से कविता के क्षेत्र में भाव बोध और भाषा दोनों स्तरों पर यथार्थ की एक नई लहर का उन्मेष हुआ, उसी प्रकार कहानी में भी नई कहानी के विरुद्ध रचना के स्तर पर यथार्थ के नए स्तरों की के उद्घाटन के प्रयास हुए, जिसकी अभिव्यक्ति दूधनाथ सिंह, विजय मोहन सिंह, महेंद्र भल्ला, सुरेंद्र चौधरी आदि के समीक्षात्मक लेखों में हुई। ऐसा प्रायः उन समीक्षा लेखों में हुआ जहां उन्होंने नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानी संग्रहों की समीक्षा करते हुए उनसे अपना अलगाव प्रकट किया। यह एक प्रकार का पुनर्मूल्यांकन था जिसके द्वारा कथा समीक्षा के कुछ नए प्रतिमान भी सामने आए। इस युवा पीढ़ी ने जानबूझकर व्यावसायिक और बड़ी पत्रिकाओं का विरोध किया, अर्थात कहानी की बढ़ती हुई व्यावसायिकता का विरोध किया। शायद इसलिए इनमें से बहुत सी समीक्षाएं लघु पत्रिकाओं के माध्यम से सामने आईं। जिस प्रकार कहानी के क्षेत्र में कुछ नए प्रयोगों के कारण कहानी समीक्षा की एक अपनी नई पद्धति की जरूरत महसूस की गई थी, उसी प्रकार उपन्यास में भी नए सृजनात्मक प्रयासों के साथ नए ढंग के उपन्यास समीक्षा की पद्धति के विकास की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इस दृष्टि से फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल 1954 ईस्वी और परिति परिकथा 1957 ईस्वी चुनौती के रूप में समीक्षकों के सामने प्रस्तुत थे। किसी हद तक शेखर एक जीवनी 1940-44 ईस्वी तथा नदी के द्वीप 1951 ईस्वी की रचना ने एक नई पद्धति के विकास की अपेक्षा पहले ही जगा दी थी। रेणु के उपन्यासों ने जैसे इसका और टाला जाना असंभव कर दिया। इन उपन्यासों के समीक्षक एक नई पद्धति की मांग भी करते जाते थे और लगे हाथों कुछ दूर तक बनी बनाई लीक से हटकर समीक्षा भी करते जाते थे। उदाहरण के लिए नेमीचंद जैन ने हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा शीर्षक देकर मैला आंचल की समीक्षा की और कथा शिल्प का विशिष्ट प्रयोग किया। कथा शिल्प का विशिष्ट प्रयोग नाम से निर्मल वर्मा ने प्रति परिकथा का मूल्यांकन किया। ऐसी समीक्षाओं के द्वारा तत्काल उपन्यास समीक्षा की किसी सुनिश्चित पद्धति का आविष्कार भले ही न हुआ हो, पर इतना स्पष्ट हो गया कि पुराने ढंग की तत्वधर्मी आलोचना के कथानक, चरित्र चित्रण, देशकाल वातावरण आदि साचे इस प्रकार की रचनाओं के लिए निरर्थक हो गए। इन समीक्षाओं के शीर्षक उपन्यास रचना के क्षेत्र में नई दिशा के उद्घाटन का स्पष्ट संकेत देते हैं और नई समीक्षा एक नई पद्धति की खोज के प्रयास का आभास देती है। नेमीचंद जैन ने मैला आंचल के कथानक में अंकित देहाती जीवन के प्रति लेखक के विशिष्ट दृष्टिकोण का विस्तृत विवेचन किया, उस अपूर्व आत्मीयता का जिक्र किया जिसके साथ लेखक ने गांव के जीवन की समस्त कटुता और संगीत को सरलता और विकृति को स्वार्थपरता और सामाजिक एक सूत्रता को अज्ञान और मौलिक नैतिक संस्कार को संजोया है। उन्होंने उपन्यास को इस कोटि के सभी हिंदी उपन्यासों से भिन्न इसलिए माना कि लेखक ने देहाती जीवन को अत्यंत आत्मीय और कवित्वपूर्ण दृष्टि से देखा। आगे चलकर इस कवित्वपूर्ण दृष्टि की जो व्याख्या समीक्षक ने की वह स्पष्टता उपन्यास में कविता के प्रतिमानों को लागू करने का प्रयास है। समीक्षा के अंत में उन्होंने संरचना की उस प्रयोगात्मक प्रतिक्रिया की आलोचना भी की जो एक सीमा के बाद रस सृष्टि में बहुत सहायक सिद्ध नहीं होती है और उपन्यास के भावबोध को वृंदावन को वाद्य वृंद के सदृश से समझाया। ऐसा लगता है कि विभिन्न भाव एक बड़े भारी वाद्य वृंद से अलग-अलग वाद्य हो जिनकी स्वर संगति अपनी जगह ठीक होते हुए भी उनके सम्मिलित प्रवाह में समन्विति नहीं है। लगता है कुछ विवादी स्वर लग रहे हैं हो अथवा कुछ संवादी स्वर ध्वनियों की विविधता में कहीं खो गए हो। इस प्रकार इस उपन्यास में लोक संस्कृति की अपूर्व संपत्ति के नवीन प्रयोगों को समझने के लिए उन्होंने कभी न थमने वाले किंतु सर्वथा संवेदनशील पार्श्व संगीत के उपमान का सहारा लिया। यह आकस्मिक नहीं है कि रेणु के दूसरे उपन्यास प्रति परिकथा के से मन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए निर्मल वर्मा को भी कुछ इसी प्रकार की पद्धति का सहारा लेना पड़ा। समूचा उपन्यास पढ़े जाने के बाद लगता है जैसे हम किसी गांव का अद्भुत विचित्र कार्निवाल देख आए हैं। अनेकानेक रंगों, गंधों, सुरों की हरहराती धारा हमारे बीच बहकर आगे बढ़ गई है। अनेक व्यक्तियों की असंगतियों, दुख सुख, रास विलास से हमने अपने को संपृक्त किया है, किंतु ये चेहरे, रंग और सुर अपने में महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इस कार्निवाल की गतिमयता और विरल प्रवाह की कलकल, हवा में उड़ते तरंगों की आभा, एक मायावी लय जो समस्त व्यक्तियों और घटनाओं के बीच गुजरती हुई हमारे मस्तिष्क और हृदय को आलोड़ित कर देती है। अपनी समूची काव्यात्मकता के बावजूद इन पंक्तियों में प्रति परिकथा की बुनावट, गति, उसमें अंकित जीवन की खासियत, उस जीवन के माध्यम से संपर्क में आने वाले पात्रों के बारे में जो कहा गया है वह किसी तत्वदर्शी समीक्षा में संभव नहीं थी। निर्मल वर्मा को इसलिए शिकायत भी है कि रेणु ने हिंदी उपन्यास के रचना विधान और कथा शिल्प के क्षेत्र में जो परिवर्तन किए हैं, नए मोड़ के लिए मोड़ लिए हैं, उनके आधार पर हमने अपने रूढ़िगत मानदंडों को परिवर्तित या परिमार्जित करना उचित नहीं समझा। जिन समीक्षकों ने प्रति परिकथा पर दुरूहता और अस्पष्टता का आरोप लगाया उनके बारे में उनका कहना था कि इस उलझाव का कारण परिकथा में न होकर हमारी आज की आलोचना पद्धति साहित्य के तथा कथित मानदंडों में सन्निहित है, क्योंकि निर्मल वर्मा को साहित्य के तथा कथित मानदंडों से शिकायत है। इसलिए जाहिर है कि उन्होंने उपन्यासों की प्रकृति और शिल्प के अनुरूप किसी बने बनाए मानदंड का प्रयोग न कर संदर्भ के अनुरूप कुछ प्रासंगिक और कहीं कहीं मूलभूत प्रश्न उठाए हैं। उदाहरण के लिए किसी साहित्यिक रचना में यथार्थ के प्रति दृष्टिकोण का स्वरूप कलाकार की वैचारिकता, विशेषकर अपने को सोशलिस्ट समझने के आग्रह का उसके कलात्मक व्यक्तित्व का प्रभाव, उपन्यास में नाटकीयता की सृष्टि एवं उपन्यास में कथा कथित बिखराव को कथा शिल्प के विशिष्ट प्रयोग के रूप में समझने की दृष्टि आदि। उपन्यासों की जिस समीक्षा पद्धति का विकास इसी प्रकार की कृतियों समीक्षाओं में क्रमशः हो रहा था उसका एक कारण उपन्यासों की निरंतर जीवंत प्रयोगशीलता भी रही। इस प्रकार की समीक्षाओं में देवी शंकर अवस्थी की एक टूटा दर्पण शीर्षक से चारुचंद्र लेख की समीक्षा, दूसरों का नरक नाम से श्रीकांत वर्मा के अंधेरे बंद कमरे की समीक्षा और कवि दृष्टि का अभाव शीर्षक से कुंवर नारायण द्वारा की गई झूठा सच की समीक्षा का उल्लेख विशेष रूप से किया जा सकता है। ऐसे प्रयासों का पहला आभास नेमी चंद्र जैन के संग्रह अधूरे साक्षात्कार में दिखाई पड़ा। इस क्रम में राजेंद्र यादव ने 18 उपन्यास 1981 ईस्वी में संकलित समीक्षात्मक लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। समय समय पर लिखी गई इन समीक्षाओं में चंद्रकांता संतति से एक इंच मुस्कान तक 18 उपन्यास तो शामिल हैं। परिशिष्ट में 8 उपलेखों में से अंतिम है 1977 की का साहित्य परिदृश्य जलता हुआ मकान शीर्षक से एक टिप्पणी। पुस्तक की योजना और चयन कुछ अटपटा लग सकता है। ग्रहण और त्याग का सवाल निजी पसंद और विवेक से ताल्लुक रखता है। जो भी राजेंद्र यादव ने भूमिका में औजारों की तलाश संबंधी चर्चा के बीच इसकी सफाई पेश की है, शायद इसलिए भी कि उसमें खुद उनके अपने कुल 3+2 यानी 5 उपन्यास शामिल है। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आलोचक पर विश्वास अविश्वास व्यक्त करते हुए या ना इंसाफी की शिकायत करते हुए कवियों ने बराबर अपने पक्ष में बयान दिए हैं। ऐसा अक्सर उस स्थिति में भी हुआ है जब लीक छोड़कर चलने के कारण उन्हें अपने रचनात्मक कर्म के संदर्भ में नए प्रतिमानों को प्रस्तावित करने या फिर अपनी सृजन प्रक्रिया या सरोकारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस हुई। राजेंद्र यादव की चिंता भी ठीक ही ऐसी है। परंपरा से न जुड़ने के कारण ही आज हमारे पास न तो समीक्षा की समझ का मानकीकरण है न मुहावरे का। शायद औजार तो है ही नहीं, यह भी कि हर विधा का अपना एक मुहावरा या अनुशासन होता है और वह पूरे परिप्रेक्ष्य के विचार पुनर्विचार में से ही उभर कर आता है। समीक्षकों पर उनके अविश्वास का अंदाजा उस उदाहरण से लगाया जा सकता है जो समीक्षकों को संबोधन के नाम पर पुस्तक के आरंभ में छपा है। यह अविश्वास और संदेह उपन्यासों के समीक्षाओं के बीच भी दिखाई पड़ता है। मसलन धूप छाही रंग पर लिखते हुए नेमीचंद जैन द्वारा प्रयुक्त साक्षात्कार को जादू की छड़ी कहकर उनके कथा संस्कार को मूलतः रोमानी और छायावादी कहते हुए यह घोषणा करना कि धूप छाई रंग इन 2 दशकों में छठा महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसकी पहली कड़ी उनका अपना उपन्यास उखड़े हुए लोग था। यह बात अलग है कि उनकी इस राय से इत्तेफाक रखने वाले लेखक समीक्षक मुश्किल से मिलेंगे। राजेंद्र यादव शायद इस बात से बेखबर होंगे कि उनकी गैर जानकारी में ही कुछ लेख आत्ममोह और वैयक्तिक मुलाहिजे के शिकार हो गए हैं। परिशिष्ट में अपने उपन्यास के संदर्भ में औरों को जवाब देने की बेचैनी कुछ ऐसी ही अकुलाहट का नतीजा है। ठीक उसी तरह अपने उपन्यास पर लिखे हुए लेख पाठक समीक्षक पर अविश्वास से प्रेरित है। जिस लेख में उपन्यास करने से जितनी दूरी कायम है वह उतना ही प्रभावी है। जे लेख कथा समीक्षा के किसी जड़ ढांचे को स्वीकार नहीं करते, हर कृति के किसी केंद्रीय बिंदु की तलाश कर उसके चारों ओर एक अलग ढांचा तैयार किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि रचना की प्रयोगात्मकता के सामने पूर्व निर्धारित औजार व्यर्थ हो जाते हैं। उसकी समीक्षा के तर्क उसी के भीतर से उभर कर अपना तंत्र खुद बनाते हैं। कभी-कभी परिवेशीय दबाव जो रचनाकार आलोचक में से किसी को के हो सकते हैं अध्ययन की दिशा निर्धारित करते हैं। जैसा कि चंद्रकांता संतति पर लिखे गए लेखों से हुआ है। इन लेखों के की सबसे बड़ी खूबी इस बात में है कि इनमें आलोचना रचना पर नहीं बल्कि रचना आलोचना पर हावी है। किसी कृति के अध्ययन का यही सही और कारगर तरीका है। चूंकि रचनाएं अलग-अलग हैं, इसलिए समीक्षा के औजार और उनके प्रयोग की विधि भी अलग है। सबसे बड़ा आकर्षण है उनकी रचनात्मकता, जिसमें दोहराव कहीं नहीं है। इनमें से कई लेख कथा समीक्षा के मॉडल हो सकते हैं। हिंदी की काव्य समीक्षा के सार्थक और महत्वपूर्ण प्रयास जिस तरह स्वयं कवियों ने किए हैं, जिनमें पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी, अज्ञेय शाही सबकी गणना की जा सकती है, उसी प्रकार कथा समीक्षा की दिशा में औजारों की सार्थक तलाश का श्रेय राजेंद्र यादव को दिया जाना चाहिए। देवी शंकर अवस्थी ने हिंदी की कथा समीक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का जिक्र करते हुए कहा था कि कथा समीक्षा की नई पद्धति पर औजारों को विकसित करते हुए पश्चिम के फिक्शन क्रिटिसिज्म में से भी सहायता ली गई है और काव्य समीक्षा की कोटियों को भी लागू किया गया। कुंवर नारायण की झूठा सच की समीक्षा का शीर्षक ही उपर्युक्त कवि दृष्टि की खोज का प्रमाण है। हिंदी उपन्यास में हिंदी में उपन्यास समीक्षा का नितांत अभाव पहले भी नहीं रहा। हिंदी के सभी प्रसिद्ध उपन्यासकारों पर और महत्वपूर्ण उपन्यासों पर कुछ शोध ग्रंथों के रूप में भी और कुछ समीक्षा ग्रंथों के रूप में ऐतिहासिक, परिचयात्मक अथवा तत्वधर्मी समीक्षा की भरमार रही, परंतु इस दशक की उपन्यास समीक्षा का इस पूर्ववर्ती समीक्षा से मौलिक भेद इस बात में है कि इनमें बने बनाए सांचों के में फिट करके परस्पर सर्वथा भिन्न प्रकृति के उपन्यासों का मूल्यांकन प्रस्तुत करने की बद्ध लीक का पालन नहीं किया गया, बल्कि इस उपन्यास में उपन्यास की संरचना और उसमें यथार्थ के विभिन्न स्तरों के कल्पनात्मक सृजन का विश्लेषण करने का विशेष ध्यान दिया गया। परंतु जैसा पहले कहा जा चुका है कि हिंदी में कथा समीक्षा की किसी सुनिर्दिष्ट पद्धति का विकास नहीं हो सका, कुंवर नारायण ने कल्पना में प्रकाशित अधूरे साक्षात्कार की समीक्षा में इस समीक्षात्मक दृष्टि की खामियों की ओर संकेत किया और कथा समीक्षा की समस्याएं में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शीर्षक अपने लेख में हमने भी इस समस्या की ओर संकेत करने का प्रयास किया है। खंड 8, कथा समीक्षा समाप्त।